सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इसका मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला, और जिसके मुख्य लेखक स्वयं होशे नबी हैं। होशे नबी की नबुवतें इसराइल राज्य के विषय में की गई थी, जिसका वो नागरिक था। इस पुस्तक की नबुवतें इसराइल के प्रति परमेश्वर के अपरिवर्तनीय प्रेम की घोतक हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले इसकी रूपरेखा पर विचार करेंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन समाप्त किए और आज हम एक नई पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जो पुराने नियम की पुस्तक में से और भविष्यद वक्ताओं की पुस्तक में से होशे नबी की पुस्तक से है, और आज हम विशेष करके उसके परिचय को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और विशेष करके हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। पिताजी, आज जब हम होशे नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके हम होशे नबी के जीवन से जब सीखते हैं, हमारे भाई बहनों के जीवन में भी वे कार्य उनके जीवन में दिखने पाए। हाँ प्रभु, इस घड़ी हर एक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, हमें सिखाएं, समझाएं और अपनी महिमा लें। इस अध्ययन में आप हमारी सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब आज होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, और आज हम पुराने नियम के भविष्यद वक्ताओं में से होशे की पुस्तक का परिचय देखेंगे। होशे से मलाकी तक 12 छोटी भविष्यवाणियां हैं, जिन्हें छोटे भविष्यवक्ता कहते हैं, और यशाया, यर्मिया और यहेजकेल तथा दानियल को बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं। इन्हें छोटे भविष्यवक्ता इसलिए कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां छोटी हैं, न कि भविष्यवक्ता मान सम्मान में छोटे हैं। परंतु देखा जाए तो होशे की पुस्तक दानियल से बड़ी है, अतः छोटे भविष्यद्वक्ता शब्द के अर्थ के अनुसार छोटे नहीं हैं, वे भी बड़े थे और अपने संदेश में महान माने जाते थे। ये भविष्यद्वक्ता देशभक्त थे, परंतु पृथकवादी नहीं थे। उनका संदेश था कि परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाओं को तोड़ा था, अतः उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए या केंद्र में भले कामों पर लाना था। यही कारण है कि मुक्त विचारकों ने और समाजवादी सुसमाचार प्रचारकों ने इन छोटे भविष्यद्वक्ताओं का अत्यधिक संदर्भ दिया है। परंतु दुख की बात तो यह है कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के मुख्य संदेश को अनदेखा किया। मेरे मित्रों, होशे की भविष्यवाणी में हम यही देखेंगे। इन भविष्यद्वक्ताओं ने अन्य जातियों के साथ इसराइल की संधि के विरुद्ध आवाज उठाई, क्योंकि इससे ईश्वर भक्ति में कमी आ गई थी। वे देशभक्त थे और राजनीतिक एवं नैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे। उन्होंने इसराइल को परमेश्वर से दूर हो जाने के विरुद्ध चेतावनी दी। होशे विभाजित इसराइल में उत्तरी राज्य का भविष्यद्वक्ता था। उत्तरी राज्य इसराइल कहलाता था और दक्षिणी राज्य यहूदा कहलाता था। होशे नबी की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकेल के दिनों में इसराइल के राजा योआस के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, होशे पहले तो यहूदा के चार राजाओं के नाम लेता है, फिर इसराइल के राजा का नाम लेता है, क्योंकि वे सब होशे के समकालीन थे। वह उत्तरी राज्य इसराइल का भविष्यद्वक्ता था। होशे की ही समय में इसराइल में एक और भविष्यद्वक्ता था, आमोस। उसके साथ ही यहूदा में मीका और यशाया भविष्यद्वाणी कर रहे थे। उसकी सेवा का समय लगभग 50 वर्ष रहा और उसने इसराइल को बंधुआई में जाते देखा, जो उसकी भविष्यद्वाणी थी। हम उसकी तुलना दक्षिणी राज्य यहूदा के भविष्यद्वक्ता यर्मिया के साथ कर सकते हैं। यर्मिया ने भी दक्षिणी राज्य को भावी बंधुआई के प्रति चिताया था और अंत में उन्हें बंधुआई में जाते देखा। यर्मिया जो एक भविष्यद्वक्ता है और होशे में अनेक समानताएं हैं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक का विषय परमेश्वर के पास लौट आने की याचना है। मेरे पास एक शीर्षक है, संपूर्ण विश्व का महानतम पाप, जिसमें इस पुस्तक की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अतः यह होशे की इस अद्भुत पुस्तक की प्रस्तावना के लिए अति उत्तम है। कहा जाता है कि आज का प्रचार मंच सामर्थ्यहीन है एवं अनिश्चित है, वरन वह जंगल में पुकारने वाले के शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 23 पद की अपेक्षा उदासीन मनुष्यों के खुजलाने वाले कानों के लिए गुंजन का कार्य करता है, उनकी सनक और मन की इच्छाओं के लिए। यदि यह बात सच है और अधिकतर है भी, तो प्रचारक जीवन के महान सत्यों को थामने में चूक जाते हैं। इस चूक का कारण है कि प्रचारक आलोचना से बचना चाहते हैं और अधिक संवेदनशील श्रोताओं के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अधिकतर इसका कारण है कि वे जीवन के कटु सत्यों का सामना करने से डरते हैं और जीवन के विकराल विषयों से संघर्ष करने से डरते हैं। हमारे प्रचारक कविताएं सुनाकर गुलाब जल छिड़कते हैं। वे यह कहने की अपेक्षा कि प्रभु यीशु में विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार या घराना उद्धार पाएगा, वे काल्पनिक संसार में जीते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग मानसिक रीति से पीड़ित हैं। सिनेमा, मासिक पत्रिकाएं तथा अन्य संचार माध्यम जीवन को आवश्यकताओं से विरक्त प्रकट करते हैं। जन समुदायों को शिक्षा देने और उनमें पहुंचने वाले ये माध्यम अपने दस्ताने उतारकर दैनिक समस्याओं की चर्चा करते हैं, परंतु प्रचारकों के साथ ऐसा नहीं है। वे इन मुद्दों को अनदेखा करते हैं। परंतु होशे की भविष्यवाणियों में हम जीवन की समस्याओं और दैनिक विषयों की चर्चा करने से नहीं बच सकते, क्योंकि होशे की भविष्यवाणियों की मुख्य रूपरेखा के पीछे यही कहानी है। यह एक मनभावन कहानी नहीं है, परंतु होशे के संदेश को समझने के लिए हमें इन बातों को समझना अति आवश्यक है। मेरे मित्रों, होशे की कहानी के पीछे एक टूटे हुए परिवार की त्रासदी है। होशे का व्यक्तिगत अनुभव उसके संदेश की भूमिका है। वह एक टूटे हुए परिवार से आता है और दुखी मन से इसराइल राष्ट्र को संदेश सुनाता है। वह जानता था कि परमेश्वर को कैसा दुख होता है, क्योंकि उसने भी वैसे ही दुख का अनुभव किया है। परिवार समाज का एक पाषाण आधार है और हर एक जाति के साथ ऐसा ही है। मनुष्य का परिवार परमेश्वर की देन है। परमेश्वर ने आरंभ ही में मनुष्य को पारिवारिक जीवन दिया है। परिवार सामाजिक रचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। जैसे भौतिक संसार में अणु एक इकाई है, कोई भी देश उसके परिवार की शक्ति से अधिक नहीं है, क्योंकि परिवार ही समाज का रंग और रूप निर्धारित करता है। परिवार देश को बांधने वाली एक जंजीर है और प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, परिवार ही वह स्थान है जो हमारे रहने, करने और हमारे व्यक्तित्व का मूल है। परिवार ही है जो हमें अपनी वास्तविकता में लाता है, और हम ये कह सकते हैं कि परिवार ही हमें अपनी वास्तविकता में आगे बढ़ाता है। बाहर निकलने पर तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से सुसज्जित होते हैं, बाहर तो हम एक दिखावा प्रदर्शित करते हैं, परंतु घर की चार दीवारी में हम मुखौटा उतार कर अपने स्वाभाविक रूप में होते हैं। क्योंकि परिवार ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा के नियम स्थापित किए हैं। उसके चारों ओर पर कोटा खड़ा किया है, जिनमें से एक विवाह है। परमेश्वर ने विवाह को संसार में सबसे अधिक महत्व दिया है। विवाह समाज की रचना नहीं है, समाज ने तो केवल उसको स्थिर किया है। परमेश्वर ही ने विवाह की स्थापना करके मनुष्य को दिया है। जी हाँ, विवाह उसके स्पष्ट वचन पर आधारित है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 6 पद में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने पहला विवाह संपन्न किया, उसी ने पहली दुल्हन दी और उसी ने पहले दंपति को आशीर्वाद दिया था। विवाह एक वैधानिक इकरार से बढ़कर है, आर्थिक प्रबंध से बढ़कर है, दो प्रेमियों के संबंध से बढ़कर है। यह परमेश्वर का काम है। विवाह परमेश्वर की अधिकृत आज्ञा है। लोग प्रायः सोचते हैं कि विवाह एक प्रकार का लाइसेंस है, परंतु मेरे मित्रों, सफल विवाहित जीवन के लिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर विवाह को संपन्न ना करे तो वह उजड़ जाएगा। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे संसार में, हमारे देश में परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने मानव जाति को प्रजनन का अधिकार विवाह की सीमाओं में ही दिया है। यही परिवार है। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, और वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकालने से पूर्व यह व्यवस्था प्रदान की थी। उनके तन को ढांकने वाली पशु की खाल के अतिरिक्त उनके पास बस विवाह का प्रमाण पत्र था। अदन की वाटिका से आने वाली केवल यही एक प्रथा थी। विवाह एक पावन संबंध है, एक पवित्र एकता है। नया नियम परमेश्वर के मन को सारांश रूप में प्रकट करते हुए कहता है, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 4 पद में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अतः मेरे भाइयों, विवाह एक वैधानिक रीति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह क्रोधावेश में तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह संदेह पर नहीं तोड़ा जा सकता। अपनी इच्छा से आप विवाह को नहीं तोड़ सकते हैं। मेरा अपना विचार है कि विवाह को तोड़ने वाले केवल दो कारण हैं। पहला है मृत्यु, जो स्वतः ही विवाह को तोड़ देती है। दूसरा है अनिष्ठा, पति या पत्नी का छल। पुराने नियम में व्यभिचारी को सबसे अधिक कठोर दंड दिया जाता था। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 20 और 21 पद में भी हम पढ़ते हैं, कुंवारी लड़की के व्यभिचार के संबंध में आदेश देता है, यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाएं और उस पुरुष की बात सच ठहरे तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उस पर पत्थरवाह करके मार डालें। कुछ उत्साही विश्वासी रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद के आधार पर कहते हैं कि किसी तलाकशुदा व्यक्ति को विवाह नहीं करना है क्योंकि उसका निवर्तमान साथी जीवित है। पद 2 में लिखा है, विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। वे भूल गए कि विवाहित पुरुष यदि व्यभिचार करे तो वह पत्थरवाह किया जाए और व्यवस्था में निर्दोष पक्ष के पास जीवन साथी नहीं है। यदि आज ऐसा कर दिया जाए तो चलने के लिए रास्ता नहीं होगा क्योंकि हर जगह पत्थरों के ढेर लगे होंगे, क्योंकि आज हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में, टीवी समाचारों में देखते और सुनते हैं कि व्यभिचार चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस कहता है, जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मेरे मित्रों, व्यवस्था के संबंध में एक और मुद्दा है जिसे व्याख्या की आवश्यकता है, वह व्यवस्था विवरण में है, पुरुष को दोषारोपण से मुक्ति। आप सोच रहे होंगे कि स्त्री क्यों दोषी ठहराई जाए जबकि पुरुष दोष मुक्त किया जाता है। आपको दो बातें ध्यान में रखना है, पहली कि जो शब्द यहां काम में लिया गया है वह सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है मनुष्य। हमारी वैधानिक भाषा में इसे पक्ष कहा जाता है जो स्त्री या पुरुष संबंधित होता है। हमें यह भी स्मरण रखना है कि विवाह प्रभु यीशु और कलीसिया के संबंध का प्रतीक है। प्रभु यीशु तो कभी दोषी नहीं हो सकता, यदि दोषी है तो वह कलीसिया ही है। धर्मशास्त्र दोगली बातों की शिक्षा नहीं देता है, परंतु मेरे विचार में एक भिन्न मानदंड प्रस्तुत किया ही गया है। मेरा अपना विचार यह है कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष से अधिक कोमल बनाया है। यही कारण है कि यदि स्त्री पतन का मार्ग अपनाए तो वह पुरुष से कहीं अधिक भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक में दूसरे से अधिक बुरा पाप होता है, परंतु उसके परिणाम अधिक विनाशक होते हैं। मैंने अपनी सेवा में देखा है कि बच्चे अपने पिता की निर्बलताओं के साथ निभा पाते हैं, परंतु यदि माँ गलत है तो बच्चे कभी अच्छे नहीं निकलते हैं। एक बुरा पिता संतान के लिए बहुत बड़ी बाधा है, परंतु अच्छी माता उस क्षति की पूर्ति कर देती है। माता ही परिवार का केंद्र है। एक बार एक स्त्री को कलीसिया का पदभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने इनकार करते हुए कारण बताया, मैं शिशुशाला की सेवक हूँ। मुझे देखने वाली 6 आंखें हैं और मैं उन्हें परमेश्वर की ओर ले जाना चाहती हूँ। परमेश्वर ने माता को परिवार में रखा है और उसे वहाँ बड़ा महत्व प्रदान किया गया है। मेरे मित्रों, हर एक स्त्री कभी एक छोटी बालिका थी। एलन बेक ने अपने व्हाट इज ए गर्ल में कहा, छोटी बालिका किसी के साथ सर्वोत्तम अवस्था है। वे स्वर्गदूतों की आभा लिए जन्म लेती हैं, यद्यपि यह आभा समय के साथ विलोप हो जाती है, परंतु आपका मन जीत लेने के लिए फिर भी बची रहती है। वे मिट्टी में बैठी हों या खिसिया कर रो रही हों या माँ के सर्वोत्तम परिधान में सड़क पर चल रही हों। मेरे प्रियो, एक बालिका संसार में सबसे अधिक मृदु या कटु हो सकती है। वह डर कर भागती फिरे, पांव पटके, विचित्र आवाजें निकाले और आपको थका डाले, तो आपका मुंह खुलने से पहले वहां खड़ी अपनी आंखों में विशेष चमक लिए खड़ी रहती है। बालिका मिट्टी में खेलती सरल स्वभाव है, सिर पर खड़ा सौंदर्य है और गुड़िया को टांग सी खींचती एक माता है। परमेश्वर बालिका की रचना करने के लिए अनेक प्राणियों से अंश एकत्र करता है। वह चिड़िया का गीत, सुअर की चित्कार, गधे का हठीलापन, बंदर की उछलकूद, टिड्डे की चुस्ती, बिल्ली की जिज्ञासा, लोमड़ी की चतुराई, बिल्ली के बच्चे का कोमलपन और सबसे बढ़कर एक स्त्री का रहस्यमय मन संयोजित करता है। परंतु आज दुख की बात तो यह भी है कि बहुत सारे क्षेत्र में बालिकाओं को आदर नहीं दिया जाता है, जन्म से पहले मार दिया जाता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हर एक बालिका उसकी रचना है और वह बढ़े। मेरे मित्रों, परमेश्वर एक बालिका के आकर्षण को एक कोमल एवं मृदुल साधन, एक स्त्री बनाता है। परंतु यदि स्त्री भटक जाए तो त्रासदी अवर्णित होती है। होशे की भविष्यवाणी की भूमिका में एक पतित स्त्री और एक टूटा हुआ परिवार है। यह कहानी परमेश्वर के विवाह संबंधित आदर्श और नारीत्व की तुलना में रखी जाना चाहिए। परमेश्वर इसके द्वारा अपनी कहानी सुनाता है। जी हाँ, एप्रेम की पहाड़ियों में बसे छोटे छोटे नगरों में से एक नगर में एक युवक होशे और एक युवती गोमर रहते थे। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। यह कहानी कभी पुरानी नहीं होती है, परंतु किसी कारणवश गोमर भ्रष्ट हो गई और वेश्यावृत्ति में चली गई। होशे का दिल टूट गया और उसका जीवन लज्जा से पूर्ण हो गया। वह चाहता तो उसे व्यवस्था के अनुसार नगर के प्राचीनों के समक्ष न्याय के लिए ला सकता था और व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरवाह किया जाता। क्या आपको इसके 700 वर्ष बाद की ऐसी ही घटना स्मरण आती है कि एक युवती विवाह से पूर्व गर्भवती पाई गई थी। उस स्त्री का नाम मरियम था, परंतु उस संदर्भ में यूसुफ की जानकारी गलत थी और स्वर्गदूत ने आकर उसे सच्चाई बताई। परंतु होशे की जानकारी सही थी और गोमर दोषी थी। मेरे मित्रों, यहां पर हम होशे और गोमर की प्रेम कहानी उसके पारिवारिक जीवन के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं और ये हम सब के लिए प्रस्तावना है। इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें ताकि जब हम आगे इसके अध्ययन को आरंभ करते हैं तो आप इसके पृष्ठभूमि को अच्छी रीति से समझने पाएं और इस पृष्ठभूमि के साथ हम परमेश्वर के वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस पृष्ठभूमि से आपने अपने जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम फिर से इसके आगे के पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके रूपरेखा को देखेंगे, ताकि हम अध्ययन को अच्छी रीति से कर सकें। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
दुख से भरे